ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभियान ने स्त्री पुरुष के भेदभाव को दूर करने में मदद की तथा लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से प्रचार अभियान में तेजी। दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन होगा। परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ और विजय चौक से इंडिया गेट तक यातायात बंद रहेगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 28 जनवरी से 16 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन करेगा और राजधानी के भारत मंडपम में जारी ऑटो एक्सपो 2025 आज संपन्न हुआ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा है कि इस अभियान से स्त्री पुरुष के बीच का विभेद कम हुआ है तथा बालिकाओं की शिक्षा और करियर के लिए उचित वातावरण तैयार हुआ है। श्री मोदी ने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की ताकि बेटियां बिना किसी भेदभाव के प्रगति कर सकें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के लिए प्रचार किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत नमो ऐप के माध्यम से भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी चुनावों में अपनी हार को देखते हुए रोजाना तरह तरह के वादे कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय राजधानी के हर बूथ पर 50% से अधिक वोट जीतने का लक्ष्य रखने को कहा।
दिल्ली में ये जो संगठन की ताकत है, हर बूथ पे तीन तीन चार चार पीढ़ी के कार्यकर्ता है, यही ये शक्ति इस बार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड विजय दिलाएगी। मुझे विश्वास है अपने अपने बूथ पर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके चलते आप भारी विजय प्राप्त करने ही वाले।
इस बीच राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। श्री केजरीवाल ने भी रैलियों को संबोधित किया। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी रोड शो किया। एक रिपोर्ट।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में अब 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए लगातार मैदान में उतर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन, रोड शो और जनसभाओं के माध्यम से भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ निर्दलीय भी लगातार अपने मुद्दों को जनता के बीच रख रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी, जहां स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अपने कामों का जिक्र अपने प्रचार में कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा आम आदमी पार्टी के कथित कुशासन, अधूरे वादों और कथित अनियमितताओं, खासकर शराब घोटाले को उजागर कर पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली की राजनीति में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस अपने चुनावी अभियान में मुख्य रूप से लोगों को शीला दीक्षित सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और मौजूदा सरकार की कथित विफलताओं को याद दिलाने की कोशिश कर रही है। इस चुनावी लड़ाई में तीनों ही प्रमुख दलों द्वारा एक दूसरे पर राजनीतिक कीचड़ उछालने और व्यक्तिगत हमले भी खूब देखने को मिल रहे हैं। दिवाकर के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच अरविंद केजरीवाल ने आज मांग की कि केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए।
आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे।
इस बीच भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर शहर में चुनाव प्रचार में पंजाब सरकार के वाहनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
पंजाब की सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग केजरीवाल जी दिल्ली के चुनाव में कर रहे हैं, जो कि नितांत रूप से गलत है। चुनाव के जो मापदंड हैं वो उसके बिल्कुल उसका उल्लंघन है। उन्होंने किस प्रकार से सरकारी पैसे का और मशीनरी का दुरुपयोग दिल्ली में किया, ये सबके सामने है।
कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर अपना हमला तेज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने उन पर दिल्ली सरकार से संबंधित सीएजी रिपोर्ट को पेश करने में बाधा डालने का आरोप लगाया है।
इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं।
नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके मंत्रियों पर दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पंजाब की हजारों गाड़ियां घूम रही हैं जिन पर पंजाब सरकार का स्टिकर लगा है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि इन गाड़ियों में शराब और पैसे बांटे जा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहां पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहां के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यहां पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहां पे पैसा बांट रहे हैं, यहां पे शराब बांट रहे हैं, इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूं।
वहीं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी अरविंद केजरीवाल पर प्रचार के लिए बाहरी लोगों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब पुलिस सुरक्षा दे रही है।
ये कौन सी राजनीति है भाई, यहाँ तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। अब मेरा ये कि पंजाब के लोग आए, पंजाब पुलिस की गाड़ियां वहां क्या कर रही है, वो कैसे कैंपेन कर सकती है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं।
सुश्री आतिशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर खास रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। पेश है इस श्रृंखला में कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र पर हमारे संवाददाता अमन यादव की एक रिपोर्ट।
इस विधानसभा चुनावों में लोगों की सबसे ज्यादा नजर अगर कुछ सीटों पर है तो उनमें कालकाजी विधानसभा सबसे प्रमुख है, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री आतिशी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर दक्षिणी दिल्ली से दो बार सांसद रहे रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने चुनावी दंगल में उतार कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वही कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आतिशी ने इस सीट पर 52% से ज्यादा वोट हासिल कर भाजपा के धर्मवीर सिंह को शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार भाजपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। लगभग 2,00,000 मतदाता वाले दक्षिणी दिल्ली की सीट पर पार्किंग, सड़कें और जाम की समस्या जैसे मुद्दे जनता के बीच इस बार काफी चर्चा में हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि 2013 से लगातार दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी इस सीट पर जीत दर्ज कर पार्टी की हैट्रिक बनाती है, या फिर कालकाजी की जनता कुछ उलटफेर करने वाली है। सकलेन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राजधानी में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 475 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने 255 गैर लाइसेंसी हथियार और 332 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने 40,000 से अधिक लीटर शराब, 20 करोड़ रुपए के लगभग 107 किलोग्राम मादक पदार्थ और 4 करोड़ 20 लाख से अधिक की नकदी जब्त की है। दिल्ली पुलिस और मोतीलाल नेहरू कॉलेज के छात्रों ने दक्षिण पश्चिम जिला के सत्या निकेतन मार्केट पीएस साउथ कैंपस क्षेत्र में मतदान जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत क्षेत्र में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यातायात पुलिस ने इस संबंध में परामर्श जारी किया है।
फुल ड्रेस रिहर्सल कल सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। यातायात पुलिस ने बताया कि परेड रिहर्सल विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य पथ सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाएगी। आज शाम से परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक यातायात बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने जाम से बचने के लिए लोगों से इन मार्गों पर यात्रा न करने की सलाह दी है। ऐसे में दिल्ली में भारी वाहनों पर भी रोक रहेगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस रिहर्सल के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार इसका विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है।
गणतंत्र दिवस में इस बार की झांकियां भारत की विविध शक्तियों और इसके निरंतर विकसित होते सांस्कृतिक समावेश को एक शानदार भविष्य की ओर अग्रसर करती हुई प्रदर्शित करेगी। इस बार मौसम विभाग की झांकी पहली बार प्रदर्शित होगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि IMD पिछले 150 सालों की अपनी सफलताओं और इतिहास को इस वर्ष पहली बार अपनी झांकी द्वारा दर्शाएगा।
इसमें हम हमारा 150 साल का उपलब्धियां और अभी हमारा जो चुनौतियां और आने वाले दिन में जो मिशन मौसम जैसे मूल ढांचा को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं अमृतकाल में।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुम्बियाटो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श, दिल्ली।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 28 जनवरी से 16 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन करेगा। ये महोत्सव कोलंबो और काठमांडू सहित 13 शहरों में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने बताया कि भारत रंग महोत्सव व्यापक दृष्टिकोण के साथ वैश्विक मंच पर एक सर्वोत्कृष्ट थिएटर महोत्सव बन गया है। राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे ऑटो एक्सपो 2025 का आज समापन हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में देश भर से वाहन प्रेमी बड़ी संख्या में नए और उन्नत वाहनों को देखने पहुंचे।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में असाधारण भागीदारी देखी गई। इस प्रदर्शनी में पहले 5 दिनों में 8 लाख से अधिक आगंतुक और 1500 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस संस्करण में आगंतुकों की कुल भागीदारी 6 गुना से अधिक बढ़ गई है। इस दौरान वाहन प्रेमियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक और विंटेज कार आकर्षण का केंद्र रही। दुपहिया वाहनों की श्रृंखला में बाइक, स्कूटी और डिलीवरी वाहनों को लोगों ने खूब पसंद किया। देश विदेश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों ने भविष्य में बाजार में लाई जाने वाली वाहन श्रृंखलाओं को भी इस ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया। आगंतुकों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रदर्शनी प्रबंधन और कार के बारे में अपने अनुभव साझा किए।
मेरा नाम आमिर है और मैं ऑटो एक्सपीरियंस करने के लिए आया था इस चीज को, और जो मेरा शौक है इस चीज़ को देखने का, मेरी पसंदीदा गाड़ियाँ जो भी अलग अलग ब्रांड्स और सारी चीज़ें रही, तो मैं उनसे कवर करने के लिए आया और मैंने बहुत चीज़ सीखा और समझा और एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
Hello, I'm Licha and I'm from Arunachal Pradesh and it's my first time here in Bharat Mandapam Auto Expo and I'm so excited to be here because I'm here to see the designs and engine.
Raisuddin ki report ke saath samachar kakshi se Sarfirozi.
राजधानी दिल्ली में आज सुबह और शाम को ठंड महसूस की गई। वहीं कल का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभियान ने स्त्री पुरुष के भेदभाव को दूर करने में मदद की तथा लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से प्रचार अभियान में तेजी। दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन होगा। परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ और विजय चौक से इंडिया गेट तक यातायात बंद रहेगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 28 जनवरी से 16 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन करेगा और राजधानी के भारत मंडपम में जारी ऑटो एक्सपो 2025 आज समाप्त हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।